हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में हम रोज एक एक श्लोक लेते हैं, उसी प्रकार हर सोमवार को हम लोग चैतन्य चरितमृत से एक श्लोक या उस प्रसंग पर चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। तो आज जो है बोर्ड पर मध्य लीला से आठवें मध्य लीला से प्यार नंबर 64 को लेंगे। तो बड़ा ही मधुर प्रसंग चल रहा है और यूं कह सकते हैं कि जितने भी तरह के शास्त्र हैं इस संसार में अवेलेबल, जितने भी तरह का ज्ञान है, अब जो है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और जहाँ से संसार भर में जितना ज्ञान है वो जहाँ ख़त्म होता है समझ लीजिए वहाँ से शुरू हो रहा है और ख़त्म सीधा गोलोक वृंदावन धाम में राधा कृष्ण की लीलाओं पर समाप्त हो रहा है। तो ये जो प्रसंग है चैतन्य महाप्रभु राय रमन जी का, कह सकते हैं कि सारे शास्त्रों का आध्यात्मिक जगत पहुंचाने के लिए, मतलब सबका एसेंस है ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत ही जिसे बोलते हैं रसिक भक्तों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, रिलिश करने के लिए हर जगह। और अंतिम इसका जो फल है इसका जो वो बहुत ही मीठा है। तो अभी हम लोग इस प्रोसेस में जो राय रामानंद जी का और महाप्रभु का जो वार्तालाप चल रहा है इसका इसकी शुरुआत में है, बिगनिंग में है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी से मिलकर पहले तो एक्सटेसी में गले मिलते हैं, उनके साथ कुछ ब्राह्मण्स भी होते हैं, उनको देख कर ही लोग बहुत विचलित हो जाते हैं ब्राह्मण लोग। उसके बाद महाप्रभु उनसे अलग से समय लेते हैं, उनको बुलाते हैं और उसके बाद इन आध्यात्मिक विषयों पर या इनकी इंट्रीकेसिस पर चर्चा होती है। तो बहुत ही शुभ प्रसंग है। अध्याय का नाम है महाप्रभु तथा राय रामानंद जी का वार्तालाप। तो बोर्ड पे जो श्लोक है इसको हम दोहराएंगे। प्रभु कहे एहो भाई आगे कह आर, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। प्रभु कहे, बोले पीछे महाप्रभु ने कहा, एहो यह भाई बाहरी आगे आगे कह कहो आर, और राय कहे, राय ने उत्तर दिया ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति साध्य सार, पूर्णता का सार है। अनुवाद। रामानंद राय को इस तरह बातें करते सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कथन को अस्वीकार करते हुए कहा, आगे कुछ और कहो। तब रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। हमारे पीछे बोलिए, रामानंद राय को इस तरह बातें करते सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कथन को अस्वीकार करते हुए कहा, आगे कुछ और कहो। तब रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, अवैदिक तार्किक ज्ञान से मिश्रित भक्ति निश्चय ही शुद्ध भक्ति नहीं है। अतएव शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने अनुभाष्य में उपदेश दिया है कि कर्मकांड द्वारा आत्म साक्षात्कार होना मुक्ति तथा बद्ध जीवन के बीच की तटस्थ अवस्था है। यह स्थान इस भौतिक जगत से परे व्रजा नदी में है, जहां भौतिक प्रकृति के तीनों गुण तटस्थ अथवा अव्यक्तावस्था में निष्क्रिय रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है और उसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहाँ कोई चिंता नहीं रहती। भौतिक जगत जो ब्रह्मांड कहलाता है, बहिरंग शक्ति का सृजन है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच में विरजा नदी तथा ब्रह्मलोक स्थित है। विरजा नदी तथा ब्रह्मलोक उन जीवों के आश्रय स्थान हैं जो भौतिक जीवन से ऊब कर भौतिक विविधता को नकार कर निर्विशेष अस्तित्व की ओर उन्मुख होते हैं। चूंकि ये स्थान वैकुंठ लोकों में नहीं है, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें बाह्य कह दिया, बताते हैं। ब्रह्मलोक तथा विरजा नदी में कोई वैकुंठ लोकों की कल्पना नहीं कर सकता। ब्रह्मलोक तथा विरजा नदी भी काफी कठिन तपस्या के बाद प्राप्त होते हैं, पाते हैं। कुछ किंतु इन क्षेत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति की कोई जानकारी नहीं हो पाती। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भौतिक परिस्थितियों से विरक्ति का होना इस भौतिक जगत का दूसरा पक्ष है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सब बाह्य है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो रामानंद राय ने यह प्रस्ताव रखा कि दर्शन तथा तर्क पर आधारित भक्ति अधिक उन्नत अवस्था है। इसलिए उन्होंने भगवद गीता का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। अभी फिर शायद अगला शुरू हो गया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं श। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो ये जो श्लोक है, ये हम जैसे बता रहे थे कि राय रामानंद जी अब महाप्रभु के पूछने पर उनको इन आध्यात्मिक विषयों के विषय में बताने लगे। और राय रमन जी बताते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपको कुछ भी बता सकूँ, क्योंकि आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हैं। लेकिन क्योंकि आप ही की आज्ञा है, क्योंकि आप ही की शक्ति मुझे प्राप्त है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ही मुझसे बुलवा रहे हैं। जिस प्रकार एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उस इंस्ट्रूमेंट में जो तारें लगी होती हैं, तो बजाने वाला क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, वही चीज़ बजती है। उसी प्रकार आप बजाने वाले हैं और मैं वो इंस्ट्रूमेंट के समान हूँ जो आप मुझे आज्ञा दे रहे, मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी इस कन्वर्सेशन में पिछले कुछ लोगों से हम देखेंगे कि भक्ति के महाप्रभु ने जो पूछा कि किस प्रकार मुझे आप बताइए कि भक्ति के विषय में ग्रेजुअली वो आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले कुछ लोगों में जहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के विषय में जहाँ चर्चा हुई, बताया कि ये सबसे ऊंचा धर्म है। लेकिन ये ऊंचा धर्म है, लेकिन किन लोगों के लिए ऊंचा धर्म है? जो वर्णाश्रम धर्म को पालन नहीं करते या जीवन पशुओं की भांति जीते, जिनके यहाँ पर कोई कल्चर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। कि कोई व्यक्ति अचानक, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे या वहाँ के लोगों को प्रचार करते थे, तो वहाँ पर भी प्रभुपाद जी बताते थे कि वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना होगा, लेकिन प्रभुपाद जी बताते थे दैवी वर्णाश्रम धर्म, जो कि भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखकर उसके अकॉर्डिंग ना चला जाए। लेकिन ये जो वर्णाश्रम धर्म भी है, जिन लोगों का, जैसे पहले जो कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं चली, जिसमें समाजवाद नाम की थी एक, है ना, एक पूंजीवाद था, कम्युनिस्ट भी थे आए, तो ये अलग अलग प्रकार की जो है अर्थव्यवस्थाएं चलाई, जिसमें लोगों को लगा कि हम सब कुछ बराबर कर देंगे, समाज में सबको बराबर रहना चाहिए, चाहे वो बहुत बड़ा पोस्ट पे भी क्यों ना हो और चाहे वो एक लेबर क्लास में व्यक्ति क्यों ना हो, दोनों को क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, सबका सैलरी सिस्टम बराबर, खाने पीने का सिस्टम बराबर, एक जैसा यूनिफॉर्म। तो कई जगहों पे वो साम्यवाद समाजवाद का खंडन होने लगा, और बाद में हर व्यक्ति को लगा जो मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी डिग्रीज हैं, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा हूँ और सैलरी मिलने को बराबर है, खाने में खाली वही रोटी, तो उसको लगा फिर मैं काम क्यों करूँ इतना। और जो बेचारे कुछ नहीं करते थे, जो आलसी थे, उनको लगा हमें काम तो कुछ ना भी करें तो भी खाने को मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार समाजवाद की जो है आलोचना होने लगी, तो कई देशों ने छोड़ा उसको। फिर पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था आई, जिसमें लोगों ने कहा भाई अगर हम जितना कमाएं हमारी हमारा कैलिबर है, हमारी योग्यता है, हमारी डिग्रीज है, तो उसका फल हमें मिलना चाहिए उतना, और जो नहीं कर रहे वो भूखे मरे, हमें क्या दिक्कत है। तो फिर भी समाज दो भाग में बंट गया, कुछ तो बहुत धनी हो गए और कुछ लोग बिल्कुल निर्धन हो गए। तो इस प्रकार की फिलॉसफीज उसी तरह डाली गई, और फिर समाज में कोई वर्ग का, किसी भी चीज़ का जो है क्लासिफिकेशन नहीं रहा। शुरुआत में तो इन सब चीज़ों का क्लासिफिकेशन था, जैसे प्रभुपाद जी इस समाज का भी क्लासिफिकेशन करते थे इन चार वर्णों में। तो कहते थे जो लोग टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन सबको हम ब्राह्मण क्लास में डाल सकते हैं, और जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, तो उन लोगों को हम क्षत्रिय की कैटेगरी में डाल सकते हैं। कुछ लोग जो बिजनेस क्लास है, जो कृषि गौरक्षा इत्यादि कर रहे हैं, तो इनको हम वैश्य क्लास में डाल सकते हैं, और जो इन सब समुदायों की सेवा कर रहा है उसको हम शूद्र क्लास में डाल सकते हैं। तो भी इसका विभाजन कर दिया प्रभुपाद जी ने, कि इस बांटे तो भी चार वर्ण हो गए, चार आश्रम हो गए, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका उनको इतना ज्ञान नहीं था लोगों को, तो ये तो स्टूडेंट लाइफ। फिर भी प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्रह्मचारी लाइफ है। फिर विवाहित लाइफ, मैरिज लाइफ, हाउस होल्डर, उस लाइफ को प्रभुपाद ने बोला कि हम इसको गृहस्थ लाइफ का संज्ञा दे सकते हैं। रिटायर लाइफ भी एक होती है, जब हम लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं गवर्नमेंट ऑफिस से, है ना, सुना होगा ये शब्द आपने, कई लोग रिटायर भी हो सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये वानप्रस्थ लाइफ हो गई, और संन्यास लाइफ, डिवोशनल लाइफ को संन्यास लाइफ, अगर आज के परिवेश में देखें तो डाइवोर्स लाइफ बोल सकते हैं क्योंकि एक तो वो समझ लीजिए संन्यास हो गया, अगर आज के परिवेश में देखने का प्रयास करें तो प्रभु जी ने तो बोले डिवोशनल लाइफ, हम बोल रहे डाइवोर्स लाइफ, तो एक किस्म का संन्यास हो गया, ठीक है जी, सारे कचड़ों से खत्म। तो उस कैटेगरी में अगर आज ढूंढने की कोशिश करें वर्ण और आश्रम के हिसाब से, तो ये सब मिलेगा। फिर भी प्रभुपाद जी कहते थे कि वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि पशु जीवन में ये सब नहीं होता, पशु जीवन में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या जो वर्ण और आश्रम की बात कर रहे हैं, ये सब नहीं होता, इसलिए पशुवत जीवन कहा गया उसको। लेकिन जब समाज में अज्ञानता बढ़ गई और ऐसे अज्ञानी लोग देश के राजा बन गए, वही पॉलिटिकल लीडर्स भी बन गए, वही लोग टीचर्स भी बन गए, तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया गया, और इतना बुरा असर हुआ इसका समाज में कि हर व्यक्ति घूम तो रहा है, भाग तो रहा है, लेकिन बिना आंखों के, समझ लीजिए, बिना ज्ञान के, और इसलिए वो व्यक्ति हर समय दुखी है, परेशान है और डिस्टर्ब जिसे कहते हैं। तो कलयुग के सारे लक्षण जो हैं पहले 5000 साल में, जबकि कलयुग की बिगनिंग हुई है, यहीं पर प्रकट कर दिए गए, केवल अज्ञानता की वजह से, केवल इस प्रकार के लीडर्स की वजह से जिन लोगों को ज्ञान नहीं है। अभी हाल ही में मैं एक नव निर्वाचित लीडर से मिला, किसी फेस्टिवल, मतलब कोई ओकेजन था किसी के यहाँ पर, और जैसे उसने मुझे देखा तो उसको लगा कि अरे ये तो इस्कॉन से हैं, साधु हैं तो चलो कुछ धर्म की चर्चा करें। वो व्यक्ति ऐसा है, उस वो पहले वो काव्य कविताओं में भी बहुत रुचि रखता है और उसकी कविता सुनने के लिए लोग देश विदेश से लोग उसको बुलाते हैं लाखों रुपया खर्च कर कि आप आइए, हमने एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बुक किया है और आप कुछ कविताएं सुनाइए। उस व्यक्ति की से जब हमारा आमना सामना हुआ तो उसने तुरंत कुछ बोलना शुरू किया और वो इतनी खतरनाक और मायावादी फिलॉसफी बोल रहा था कि वहां रुकना भी मुश्किल था। अब क्योंकि वो नेता था तो ना तो हम उसको प्रहार कर सकते हैं, ना उसको हम लोग उसको उस समय भरी सभा में उसको कुछ कर सकते हैं, तो बस ये था कि किसी तरह उससे पिंड छुटाया और निकले। लेकिन क्या बोल रहा था वो व्यक्ति कि उसने बात शुरू करी कि भागवतम का चर्चा करते हुए, इस पर कथाएं करते हुए इतना पवित्र ग्रंथ है। मैं कहा हाँ बड़ी अच्छी बात है, मैं कहा एक लीडर होकर ये भागवतम की तारीफ कर रहा है। फिर अचानक बोला कि लेकिन कई साधुओं ने जो है इसको अलग अलग ढंग से चीजें रख दी और इसको अपने अपने विचार निकालने लगे और भागवतम में तो कहीं पर भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है, इसलिए खंडन कर दिया उसने। अरे कि भाई आराध्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ऐसे करके अपनी समझ से पढ़ने के हिसाब से ये हुआ। फिर उसने और बातें भी रखना शुरू करी कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, अभी वो इस भागवतम को कोट करके बोल रहा है कि श्रीमती राधा रानी जी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इसी भागवतम को पढ़ा नहीं उसने कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। तो उसने क्या बोला कि कई बार घरों में क्या होता था, पुराने घरों में जब बेटी की शादी हो जाती थी तो शादी से जब वो वापस आती थी तो पूरे घर का काम करती थी, सारा संभाल लेती थी, या शादी होकर जाती थी तो घर के सारे काम कर लेती थी जिस जिसके भी होते थे। तो लोग बोलते थे कि बहू ने सारा घर उठा लिया, बहू ने सारा घर सर पे उठा लिया। तो इस तरह के शब्द, वैसे तो जनरली हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं दूसरे ढंग से ना, कि इसने वो बहुत शोर मचाए, कोई दुखी करते, परेशान करते लोगों को, तब वो ये शब्द इस्तेमाल करता है क्या कि इसने तो पूरा घर सर पे उठा रखा है। तो उसने ये बोला कि जैसे बहू जो है घर में सब कुछ सारे काम कर लेती थी, लोग बड़े खुशी से बोलते थे कि हमारी बहू ने सारा घर सर पे उठा लिया, तो उसी तरह कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नहीं उठाया था, उन्होंने तो जो है बस सारे काम कर लेते थे वो, इसलिए लोगों ने बोल दिया कि उन्होंने पूरा गोवर्धन उठा लिया, क्योंकि गोवर्धन पे गायें चली जाती थी, सब कुछ होता था, खेलते कूदते सब कुछ करते थे, आज तो कृष्णा ने गोवर्धन उठा लिया। मैंने कहा यह व्यक्ति अपनी बात का खंडन कर रहा है, एक तरफ भागवतम कोट कर रहा है कि भाई राधा रानी जी का एग्जिस्टेंस नहीं है, दूसरी तरफ उसी भागवतम में इसने गोवर्धन लीला नहीं पढ़ी क्या, और अपना दूसरा तर्क लगा रहा था। फिर मैं समझा कि संसार में तो पागलों की कमी नहीं है, और क्योंकि पागल भागवतम कहता है कि ऐसे पागल लोग, ऐसे फिल्म स्टार या ऐसे क्रिकेट स्टार, ऐसे लोगों को जिनको धर्म का या शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, अंधकार में है, और ऐसे लोगों को कुछ लोग जब ग्लोरीफाई करते हैं कि वाह आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत ये हैं, आप तो बहुत वो हैं, तो उन लोगों के जो ग्लोरीफाई करते हैं ऐसे लोगों को, उनके बारे में बोला गया गधे हैं, ऊंट हैं, पशु के समान है, सूअर के समान है, हाँ घोड़े गधे कुत्तों के समान। कौन लोग? वो लोग जो ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं उनके ऐसे कामों को, ऐसे बेकार के कामों के लिए जिसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि संसार में कमी नहीं है ऐसे लोगों की, और ऐसे ही लोग ऐसे लोगों को सर पर बिठाते हैं, ऐसे लोग ऐसे लोगों को इन्वाइट करते हैं और बड़ी बड़ी सभाएं लगाते हैं, लाखों रुपए की उनकी टिकट्स बनाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आज हमारा कुछ एंटरटेनमेंट कीजिए, और फिर ऐसे लोग उस सभा में जो बोलते हैं, क्योंकि लोगों ने कभी ग्रंथ तो खोले नहीं, कभी कहीं सुना नहीं, भागवत कथा नहीं सुनी, कहीं कुछ बैठे नहीं कहीं पर, तो वो जो व्यक्ति बोलता है उसको मान लेते हैं। तो इस प्रकार समाज में इस प्रकार के लोगों की संख्या की भरमार है जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, ना चार वर्णों का, ना चार आश्रमों का, और इस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं, और इस प्रकार उनका एंड रिजल्ट जो हर क्रिया का रहता है, सुख या सुविधा या आनंद, वो नहीं मिल पाता। इसलिए जब यहां से बात शुरू करी तो हम ये बता रहे हैं कि चतुर्वर्णमय सिस्टम वाला जो श्लोक कोट किया राय रमन जी ने, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस स्तर पर भी कोई आ जाए। तो जब हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, या दूसरे देशों में लो जहां पर लोग पूरा समाजवाद या पूंजीवाद कैपिटलिज्म और ये सब करने की कोशिश करते, तो पता चलता है कि किस तरह के लोगों के द्वारा हम लोग गाइडेड है, या मिसगाइडेड है, सॉरी गाइडेड का है, मिसगाइडेड है, जिन्हें ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, और वो पूरे उसकी उसको हमने पूरे देश की लगाम दे रखी है कि आप चलाइए हमारा देश। अभी न्यूज में पढ़ा कि एक देश में एक नवयुवक, अज्ञानी नवयुवक देश का प्रधानमंत्री बन गया, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, बहुत यंग है। जब उसको पता चला कि उसके परिवार के लोग भी बन सकते हैं, उन लोगों ने कहीं घपला किया था तो 40-50-60 जितने लोग थे सबको मरवा दिया। अभी पता चला वो एक सभा में बैठा था जहां पर बड़े बड़े जनरल कर्नल बैठे थे उसके साथ मीटिंग में, एक लीडर ने झपकी ले ली बस। उस मतलब 3 स्टार वाले जिस तरह के वो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के साथ बैठा व्यक्ति, बस उन्होंने एक झपकी ले ली तो उसको अगले दिन ही मृत्यु दंड दे दिया। एक कहावत है, टका शेर खा जा, क्या था सरगति वो, जोर से बोलिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर भाजी टके सर खा जा। अब ये कहावत ऐसी थी कि राजा मतलब सॉरी गुरु थे और उनके शिष्य थे, वो कहीं एक नगर में चले गए भटकते भटकते, तो वो जगह ऐसी थी कि जहां पर सब कुछ बराबर था, मतलब एक टके में आपको भाजी भी मिलेगी और एक टके में खाजा भी मिलेगा। तो उनके शिष्यों को लगा यहां तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मांगो सब कुछ बराबर बराबर मिलता है, खूब बढ़िया, बड़ा अच्छा राजा ये। तो गुरु ने कहा नहीं नहीं हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। कहते नहीं महाराज, यहां तो सब कुछ बराबर है, 1 रुपए में आप पिज्जा खा लो, 1 रुपए में पाव भाजी खा लो, बराबर है सब कुछ, तो कौन नहीं रहेगा ऐसा, कितने लोग रहेंगे ऐसी जगह पर, सारे रहना पसंद करेंगे, 1 रुपए में सब कुछ मिल रहा है आपको, बना बनाया भी मिल रहा है, रॉ मटेरियल भी मिल रहा है। तो शिष्य ने कहा महाराज आपने जाना तो आप जाइए, मैं तो इतनी अच्छी जगह छोड़ नहीं सकता। शिष्य को समझाया कि बेटा चल, कहते नहीं नहीं आप जाइए। कहते ठीक है, इतनी बढ़िया जगह। तो राजा तो वो स्पिरिचुअल मास्टर तो समझ गए कि यहाँ जहाँ पर एक ही रेट में सब कुछ मिल रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ का राजा जो है ठीक नहीं है। और बाद में ऐसे ही हुआ कुछ कि एक दिन कहीं पर कुछ विवाद हो गया और तो राजा ने किसी को फांसी दे दी। अब जिसको फांसी दी उसके गले में वो रस्सी नहीं आ रही थी फिट, तो कसाई ने बोला महाराज इसको तो गले में फांसी का फंदा फिट नहीं आ रहा है। तो उसने कहा अच्छा फिट नहीं आ रहा है, तो एक काम करो जिसके फिट आता उसको लगा दो। तो वो कहे सर किसको ढूंढे, तो सबको फिट करने की कोशिश करी तो वो मिल गया शिष्य, जो पहले पतला था लेकिन खा खा के अब मोटा हो गया था। तो उसके गले में फिट करी, कहते हाँ इसके गले फिट, महाराज इसको दे, हाँ जी इसको दे दो। वो कहता अरे मुझे क्यों दे रहे, मैंने कुछ किया भी नहीं। कहते नहीं आपका गला हमारी इस रस्सी को फिट बैठता है ना, टका सिर भाजी और टका सिर खाजा, मतलब एक ही चीज में दो चीज फिट बैठ रही, उसको फिट नहीं बैठा तो आपको फांसी देंगे। तो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, कहता महाराज आप कहाँ हैं, गुरु जी आप कहाँ हैं, आपने सही बोला था इस जगह को छोड़ देना उचित है, अब क्या करूं। सच्चे हृदय से बोलता है तो खबर मिलती है तो गुरु जी पहुंच जाते हैं वहां पर। वो कहते हैं देखा मैंने नहीं कहा था, यहाँ का जो राजा है जो 1 रुपए में सब कुछ दे रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ का राजा बेवकूफ है। तो कहते महाराज मैं समझ गया, लेकिन अब तो किसी बात, अब तो निकालो यहाँ से, ये तो फिट बैठ गई है। तो वो कहता है महाराज, गुरु जी कहते हैं महाराज आप एक क्षमा कीजिए, आप जो है ना इसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिए। कहते आपको फांसी दे दूं, कहते क्यों, कहते बस मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी, कहते ये तो कोई भी नहीं करना चाहता, ये भी मना कर रहा, आप क्यों चाहते हो। कहते महाराज इसलिए क्योंकि ये जो मुहूर्त है ना इस समय अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाकर अभी मरता है तो उसको तुरंत स्वर्ग मिलेगा महाराज, स्वर्ग मिलेगा। कहते अच्छा स्वर्ग मिलेगा, तो तुम क्यों जाओगे, मैं ना जाऊंगा। तो उसने कहा हटाओ इसको, फांसी मत दो, फांसी मुझे दे दो। तो राजा को फांसी लग जाती है और राजा जी तुरंत मर जाते। तो यहां पर क्या था, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सीन। तो ये संसार भी, हंसने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी ऐसे ही अंधेर नगरी में रह रहे हैं जहां के राजा चौपट हैं, जहां के लीडर चौपट हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, और ऐसे लोगों के बीच में रहकर वो हमें गाइड कर रहे हैं, हम उन्हें वोट करते हैं, वोट, मैंने इसको वोट दिया, मैंने इसको वोट दिया। अरे वोट करने का भी रिएक्शन है, क्योंकि अगर लीडर ने पाप किए तो राजा का भी फल प्रजा को भोगना पड़ता 1/6, और प्रजा तो पापी है ही भरी हुई है, तो प्रजा जो पाप करती है क्योंकि राजा मिसगाइडेड है, राजा को ध्यान उसके विषय में नहीं मालूम, तो उसका भी रिएक्शन राजा को लगता है। तो कितनी बड़ी सरदर्दी है, किसी को भी वोट करना, तो इसलिए इस प्रकार के अंधकार के लोगों से हम भरे पड़े। तो बता रहे हैं यहां पर जो वर्णाश्रम धर्म है उससे एकदम अलग प्रकार का जीवन जी रहे, पशुवत जीवन है, लेकिन जहां पर वर्णाश्रम धर्म की बात की जाती है। और फिर बताया था दैवी वर्णाश्रम धर्म, अर्थात अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहकर जो व्यक्ति भक्ति करता है, तो उसको प्रभु ने कहा अहो भाई। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सारे कर्म करो और कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करो। यत करोषि यत अदनाषि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पण। तो इस ये थोड़ा सा लेवल और अच्छा भक्ति का कि हाँ जो भी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, फिर साथ में भगवान को अर्पित कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु ने इसको भी बाह्य बता दिया कि नहीं ये भी एक्सटर्नल है, थोड़ा और अच्छा बताओ, इससे और ऊंचा बताओ। क्यों भैया मना कर दिया? क्योंकि यहां पर पहले व्यक्ति को कर्म करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं और उसके बाद वो अर्पित कर रहे हैं या भगवान, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कर्म मिश्रित हो रहा है। फिर उन्होंने बोला अब ज्ञान मिश्रित ये जरा ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा अच्छा है, ये सब सर्वसाध्यसार है। तो ज्ञान मिश्रित में क्या है कि यहां पर जो ज्ञान मिश्रित की बात की जा रही है या यहां पर जो कर्म मिश्रित की बात की जा रही है, या राय रामानंद जी जो जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार वेदों में कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड के विषय में चर्चा होती है, तो वो जो कर्मकांड है उस कर्मकांड का मतलब है कि हम कोई ना कोई रिचुअल करें, कोई ना कोई अनुष्ठान करें जिससे कि हमारे रोज के काम जो होते हैं, कर्म जो होते हैं, या जो हमारे को फल चाहिए वो मिल जाए। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं या हम लोग चाहते हैं हमें ये फल मिले या ये इंद्र तृप्ति का लाभ मिले, तो उन कर्मों से, उन कर्मों के फलों से आकर्षित होकर कुछ लोग जो वेदों की ऋचाओं को पढ़कर उन कर्म प्रधान चीजों की तरफ जाते हैं और उसका फल चाहते हैं, तो वो कर्मकांड है जहां पर कुछ ना कुछ फल की इच्छा रहती है। लेकिन जो राय रमानंद जी बता रहे हैं यद करोषि यद, ये उस कर्मकांड का टॉप मोस्ट स्टेज है, क्योंकि वो भगवत गीता कोट कर रहे हैं, वो कोई मायावादी नहीं है, वो कि दार्शनिक नहीं है जो कि वेदों से कोई श्लोक कोट करे और बोले कि आप जो है अगर ये पर्टिकुलर रिचुअल पूर्ति करते हो या इंद्र की पूजा करते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार के छोटे मोटे कर्मकांड की बात नहीं करी राय रमन जी ने, उन्होंने टॉप मोस्ट कर्मकांड का जो प्रकाष्ठा है, जो अंत है, क्या कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए, किसके किसको ऑफर करते हुए, भगवान कृष्ण को ऑफर करते हैं। तो टॉप मोस्ट कर्मकांड रखा है, तो कहीं किसी व्यक्ति को लगे कि क्यों रिजेक्ट कर दिया, जो रिजेक्शन कर दिया वो इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ भक्ति है, जो श्री राधा और कृष्ण के माधुर्यमय भक्ति का के आगे ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये नगण्य है उस लेवल से देखें। लेकिन अगर वेदों के हिसाब से देखें, कर्मकांड के हिसाब से देखें, तो भगवत गीता में दिया गया कर्मकांड जो सो कॉल्ड बता रहे हैं कि भगवान से जुड़ी हुई चीज, तो ये टॉप मोस्ट है कर्मकांड। उसी तरह ज्ञान कांड वेदों में दिया है ज्ञान के विषय में, है ना। तो जो लोग ज्ञान कांड के हिसाब से, अर्थात जो लोगों को लगता है, प्रभुपाद जी एक परपट में लिखते हैं सुकर्मा और दुष्कर्मा, सुविषय और दुविषय, ये तब बोलते हैं जब नरोत्तम दास ठाकुर जी एक बहुत सुंदर भजन बोलते हैं, वो भजन है कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। भांड का मतलब होता है बर्तन, विषय का मतलब, विष का मतलब विष। तो बोल रहे कर्मकांड और ज्ञान कांड ये दोनों क्या है, विष के भांड है, मतलब ऐसे बर्तन, हो सकता है सोने का बर्तन हो, उससे आकर्षित नहीं होना सोने का बर्तन है तो, लेकिन उसके अंदर पड़ा विष है। विष क्यों बोल रहे हैं कर्मकांड को और ज्ञान कांड को, क्योंकि ये हमें कर्म बंधन से बांधता है। जब व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म के पीछे फल चाहता है, कर्म करता है तो वो दुष्कर्म होता है या सुकर्म होता है। तो यहां पर दुष्कर्म का मतलब वो क्रियाएं जो शास्त्र के विपरीत हैं, केवल इंद्र तृप्ति से गाइडेड हैं, तो वो कर्म हमें बांधते हैं और फिर से हमें जीवन देते हैं। लेकिन जो दुष्कर्म करते हैं वो भी हमें कर्म से बांधते हैं और नाना प्रकार की योनि फेरे, एक श्लोक में बोल, उसी भजन में बोल रहे कि व्यक्ति को उसकी वजह से नाना प्रकार की योनियों फिरना पड़ता है। इसलिए विष के समान है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के घर में आग लग जाए और उसको अपने बचाव के लिए किसी देवी मंदिर में या ऐसे मंदिर जहां पर देवी देवताओं की पूजा होती है, उसको लगता है कि यहां मुझे शेल्टर मिल जाएगा, तो उस मंदिर में जाता है अपनी जान बचाने के लिए, तो कहते हैं इससे बढ़िया कि वो आग में चला जाए जाए वहां शेल्टर लेने गया, उन कर्मकांडियों की शरण या उन संग करने से अच्छा है कि व्यक्ति आग कोई गले लगा ले। क्यों? क्योंकि कर्मकांडियों का या जो केवल जिनकी मानसिकता या जिनका ध्येय केवल इस संसार में भोग है, इच्छाओं की पूर्ति है या कर्मों के फल को भोगना है, तो कितना बड़ा उसके जीवन में नुकसान हो जाएगा इस प्रकार के असत्संग से, क्योंकि वो भी कर्मों के प्रति आकर्षित होगा, उनके फलों के प्रति आकर्षित होगा या स्वर्ग में प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाएगा या अटैच हो जाएगा या उसके अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। तो जो व्यक्ति, जो भक्त हो सकता है भगवान के धाम जाने के लिए तैयारी कर रहा था, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ जिसे बोलते हैं, अचानक उसका स्टॉपेज आ जाएगा, उसको रोक दिया गया, ब्लॉक आ गया, क्यों? उसने ऐसे लोगों की शरण ली। उसी प्रकार जो लोग ज्ञान मार्गी हैं, जो कहते हैं कि कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से तो फल मिल रहा है अच्छा और उससे हम उच्च लोगों की प्राप्ति करते हैं, जैसे आज भक्ति सदानंद महाजी कह रहे हैं कि विरजा नदी से पहले पहले ब्रह्म लोक तक रहते हैं ऐसे लोग, अच्छे कर्म करने से स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करता है, पुण्य प्राप्त होते हैं उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शिण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य के द्वारा जब उसको स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद भी उसको फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम फिर से आना पड़ेगा, नाना योनि फिर से योनियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। और अगर दुष्कर्म करता है, क्योंकि कर्म तो क्रिया तो करनी है, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय नहीं है, उसको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है इसके द्वारा वो अपनी इच्छाओं को एग्जिबिट करेगा, लेकिन क्योंकि गलत स्थान पर है, गलत जगह पर है, कंटेमिनेटेड माइंड के साथ है, तो वो यहां पर वो सब चीज गलत ही करेगा। तो ज्ञान मार्गियों को लगता है कि जो कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, उसकी वजह से भी योनि प्राप्त होगी, और अगर बुरे कर्म कर रहा है, शास्त्र विपरीत कार्य कर रहा है या कर्मकांड के समान उस तरह से नहीं कर रहा विषय, तो दुष्कर्म है और उसके अनुसार उसको फिर से पशु योनि में या फिर से योनियों में आना पड़ेगा। तो लाभ तो कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि फिर से योनि प्राप्त हो रही है मरने के बाद। रूपा जी कहते थे अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों मल के समान है, एक सूखा मल और एक गीला मल। अब मल तो गंदा ही होता है, कौन सा मल गंदा होता है, गीला या सूखा? दोनों मल मल है। तो इसी तरह ज्ञान मार्गी कहते हैं भाई कर्म करना तो यहां पर मुसीबत है, क्योंकि अगर मैं कर्म करूंगा तो कर्म के बंधन में फंसूंगा, इसलिए वो निष्क्रिय होना पसंद करते हैं। निष्क्रिय होकर इस ज्ञान के आधार पर निष्क्रिय होकर क्या चाहते हैं कि हम लोग जो है निष्क्रिय रहें, और ऐसी निष्क्रियता मानसिकता के कारण वो जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय हैं उनको भी क्या मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं। उनको लगता कर तो कर्मी रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, किनको भगवान बनाया है, ये जो भी है सब भौतिकी तो है, कन्विंसिंग तो नहीं लग रहा ज्यादा। तो ये जो विग्रह बनाए हैं ये भी पंच तत्वों से बने हैं, जिनका नाम ले रहे हो वो भी शब्दी हैं, जो प्रसाद प्रसाद की बात करते हो है तो खाना ही, तो सब क्या है, बेकार है, मटेरियल है, मैटर है। इसलिए वो सक्रिय कृष्ण भावना में कृष्ण प्रेमियों को भी क्या समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। उनसे डाइजेस्ट नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपना जीवन जो अन्न उपार्जन करता है, भोजन बनाता है, उसको एक प्लेट में रखकर भगवान को भोग लगाता है। वो व्यंग करते हैं ऐसे लोगों का, देखो पत्थर से बनी मूर्ति खाना बनाकर लाए व्यक्ति, भगवान क्या कर रखा लगता है खा लेंगे जैसे लगता है, दिमाग खराब हो रखा है लोगों का, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं बताओ प्लेट ऐसे के वैसी की वैसी पड़ी, क्या खाया उसमें से, बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है वो अपने ज्ञान मार्ग से, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है वो, और व्यंग करते हैं ऐसे लोगों का, देखो परिक्रमा लगा रहे है ना, दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, अरे क्या है ये जीवन, सब मिट्टी है, मिट्टी से आया है, सब मिट्टी हो जाएगा, और इस प्रकार इस संसार से निष्क्रिय हो जाते हैं वो लोग, और देख नहीं पाते ऐसे लोगों को जो पूजा इत्यादि करते हैं, जो मन भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं, या उन सब चीजों को भगवान के सामने नृत्य करते हैं, तो व्यंग करेंगे, देखो नृत्य कर रहे हैं, दिमाग खराब है, नारद नाचना है, कुछ और भी नाचना, जरूर थोड़ी इसमें नाचना है। तो इस प्रकार जो ज्ञान मार्गी हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते भक्तों को, डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनको, वो तो ये देखते हैं कि संसार पूरा का पूरा पंच तत्वों से बना है, यहां पर तो बस हम लोगों को कर्म, हम आत्मा है और अगर कुछ भी कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। कई बार जब नए शुरुआत में जब भक्त लोग भक्ति करते हैं और उनको भी पता चलता है, हाँ हमें भी कर्म बंधन से बचना है, हमें तो कृष्ण के लिए ही कर्म करना है, तो प्रयास करते हैं और उस प्रयास में कई गलतियां भी होती हैं, है ना। तो हर चीज जो है भक्त लोग प्रयास करते करते जब धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है तो फिर उनको मालूम पड़ता है कि अपने हर कर्म को कैसे भक्ति बनाना है। तो इस प्रकार जो ज्ञान मार्गी हैं वो लोग एकदम बॉयकॉट करते हैं ऐसे लोगों का जो अपना जीवन इस प्रकार समर्पित कर रहे हैं भगवान को। वो चाहते हैं कि हम लोग इस प्रकार खाली बैठ जाएं और ध्यान लगाएं, बस स्पेकुलेट करते हैं, मेंटल स्पेकुलेटर्स कहते हैं लोगों को, कि भगवान या निराकार हैं या हर जगह व्याप्त हैं, वो उनको कैसे पत्थर पे बांध सकते हो, तुम उनको कैसे रूप दे सकते हो, वो तो निराकार है, उसको तो हम लोग कंसीव ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं, इनकंसीवेबल है। तो ऐसे ज्ञान मार्गी उनका ध्यान करने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं कि, और बिल्कुल ठीक भी है कि इस तरह की जब हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं, उनको लगता है भाई जो न्यूफाइड डिवोटीज है वो शुरू में वो स्मरण करने की कोशिश करता है हर बात में भगवान श्री कृष्ण का, चलो मैं भी कृष्ण का स्मरण करूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कृष्ण का स्मरण करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। तो क्या करता है, स्मरण करने की भी कोशिश करता है। तो स्मरण जब करता है तो किसका स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है। लेकिन भगवान के स्मरण में उसको कौन से भगवान याद आते हैं, क्या फॉर्म नजर आता है, क्या रूप नजर आता है, तो देखता है कि वो कंकॉक्टेड रूप जो उसका खुद बना हुआ है। जैसे किसी ने रामायण देखी, रामायण में जो भगवान राम बने थे वो कौन थे, पुरानी रामायण में अरुण गोविंद, गोविंद है ऐसे कुछ नाम था। तो जब वो आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करता राम पर, तो उसको अरुण गोविंद दिखता है। सीता के रूप में उसे कौन थी माता के साथ में, आप लोग वो तो देखे नहीं होंगे, आप लोग मतलब वो सीता माता नजर आती है। कृष्ण का ध्यान करते हैं तो अरुण भारत कृष्ण का नाम था, नीतीश भारद्वाज याद आता है। तो कनकॉक्टेड साइंस, कनकॉक्टेड लोग, और कोई किसी फिल्म स्टार से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। कहते हैं आजकल तो सीरियल भी महाभारत और ये सब दोबारा बन गए और उसमें बड़े डॉले शोले वाले लोग आ गए, तो अगर आप किसी को कोई स्मरण करेगा तो उसको वो नजर आएगा ऐसा। तो हमारे कनकॉक्टेड फीचर्स हैं कि हाँ ऐसे होंगे भगवान जी। तो ज्ञान मार्गी कहते हैं भाई ये तो सब कनकॉक्टेड है, एक तरह से बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जिन विग्रहों का स्मरण करते हैं, हम जिन कृष्ण का स्मरण करते हैं, जिस प्रकार के विग्रह हम बनाते हैं, ये कंकॉक्टेड नहीं है, ये मानसिक धर्म पर नहीं बनता, ये शास्त्र सम्मत होता है कि भगवान के विग्रह कितने बड़े बनेंगे, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनकी गर्दन कितने इंच की होगी, है ना, उनके पूरा फिगर का भी बायोडाटा दिया है, पूरा लिखा है इसमें फीचर्स, और किस शेप में भगवान खड़े होते हैं, क्या वो आभूषण पहनते हैं, क्या वो मुकुट रखते हैं, कितनी बड़ी बांसुरी बंसी या मुरली, तीन तीन चीजें हैं उनकी, तो क्या पकड़ते हैं वो, तो इस सारा का सारा वर्णन शास्त्रों में है, उसके आधार पर बनता है। और फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, आह्वान किया जाता है भगवान का। इसके अलावा हम देखते हैं कि भगवान ने जहां जहां भी अपने को प्रकट किया, स्वयंभू प्रकट हुए जहां जहां, जैसे बद्रीनाथ में भगवान प्रकट हुए तो वहां पर है, या रामेश्वर श्रीरंगम इत्यादि जाओ तो भगवान वहां पर महाविष्णु के रूप में लेटे हुए हैं। ये स्वयंभू विग्रह हैं, सेल्फ मैनिफेस्टिडिटीज, भगवान ने अपने को स्वयं प्रकट किया है। राधा रमन छोटे से शालिग्राम दामोदर शिला से भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है। भगवान के शुद्ध भक्त वज्रनाभ जो उनके परिवार में थे, उन्होंने भगवान का स्मरण करके विग्रह बनाए और वही विग्रह भक्तों के स्वप्न में आए और बताया कि मैं यहां पर दबा हूं, मुझे निकालो। तो कितनी जगहों पर भगवान जो हैं इस रूप में प्रकट हुए। तो ये फॉर्म्स जो हैं हम लोगों ने अपने हिसाब से नहीं बनाए, ये शास्त्र सम्मत है। ये उन ज्ञान मार्गियों को जिनको लगता है कि नहीं ये सब बेकार की चीजें हैं, सब मिट्टी है, उन लोगों के लिए जवाब है कि नहीं ये सब शास्त्र सम्मत है। और हम सब लोग जो हैं भगवान को ज्ञान के आधार पर नहीं, हम जैसे कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं चार प्रकार के लोग मेरी भजन मेरी भक्ति में आते हैं। आरती लोग आते हैं अर्थात जिनके कोई शरीर में प्रॉब्लम है, दुख है, कष्ट है। दूसरे वो लोग जिन्हें कुछ अर्थ की कामना है तो वो आते हैं। जिज्ञासु लोग आते हैं जो जिज्ञासा करते हैं मैं कौन, भगवान कौन, सृष्टि कैसे। और ज्ञानी लोग आते हैं जो ये जानते हैं, समझ गए, उस लेवल के ज्ञानी जिन्हें पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और सृष्टि जो है वो भगवान ने करी है। तो ऐसे ज्ञान मार्गियों को भगवान ने क्या बोला है, ज्ञानियों को ये मुझे अत्यंत प्रिय है, ना कि ऐसे ज्ञानियों को जो निष्क्रिय बैठकर हर चीज को क्या कर देते हैं, अबेंडन कर देते हैं, मानते नहीं। तो यहां पर शास्त्रों में हम लोगों को जैसे रूप गोस्वामी जी बताते हैं, अन्य अभिलाष श्रिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, कि भक्त जो है उसे क्या करना चाहिए, अन्य अभिलाष श्रिता शून्यम, जैसे ज्ञान मार्ग कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन भक्त लोग भी मन से भी इच्छाएं समाप्त कर देते हैं, किस रूप में, भौतिक इच्छाएं नहीं रखते लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं बनाए रखते हैं, अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उसे प्रेम कहते हैं। तो वो अन्य अभिलाष मतलब कृष्ण की कामना के अलावा, उसकी उनकी सेवा के अलावा अन्य अभिलाषाओं को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, ज्ञान कर्म अनावृतम। तो उनका जो फिर एफर्ट्स हैं वो कर्म मिश्रित भी नहीं रहते और ज्ञान मिश्रित भी नहीं रहते, अर्थात वो लोग इस प्रोसेस में न लगकर वो अगर कुछ क्रिया भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कर्म से भी शून्य हो गए और ज्ञान से भी शून्य हो गए, नहीं नहीं, वो अब भी कर्म करते हैं बट फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए जो उन्हें आज्ञा दी गई। ज्ञान है अब भी वो ज्ञान अर्जित करते हैं, पांचवा अध्याय पूरा ज्ञान के ऊपर है, और प्रभु भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको भी ये ज्ञान है उस व्यक्ति के जीवन के पाप ऐसे समाप्त होते हैं जैसे कि एक बहुत बड़े भूसे से बने पहाड़ पर आप अग्नि लगा दो, तो उसको समय नहीं लगता खत्म होने में। तो हम लोग जो ज्ञान का अर्जन करते हैं शास्त्रों के हिसाब से, इसका उद्देश्य होता है कि हम उसको विज्ञान के रूप में बदलें, अर्थात उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाएं, और वो सब क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो हम यहां बता रहे थे कि राय रामानंद जी ने जब चर्चा करी इस बात की कि ज्ञान मिश्रित भक्ति, तो ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब क्या हुआ, ये फिर उस ज्ञान में जहां से हमने बात शुरू कर दी, जो निष्क्रिय होना चाहते हैं उन ज्ञान मार्गों की बात नहीं कर रहे, उसकी जो टॉप मोस्ट डिवोशनल साइट में अगर जाएंगे तो उस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि हाँ ज्ञान मिश्रित भक्ति, अर्थात व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान भी अर्जित कर रहा है, है ना, और प्रचार भी कर रहा है और भगवान की भक्ति में भी लगा है, ऐसा ज्ञान मिश्रित कि उसको ज्ञान भी है और ज्ञान का प्रचार भी कर रहा है लेकिन भक्ति में भी लगा हुआ है, तो ये ज्ञान मिश्रित है। लेकिन यहां पर कह रहे ज्ञान मिश्रित और कर्म मिश्रित को भी क्या करो, रिजेक्ट करो। अब आएगा आगे चलकर कि वो भगवान जो है इसको भी बाहे बता देंगे कि ये भी एक्सटर्नल है, क्योंकि किस स्तर पर और किस से कंपेयर करें तो एक्सटर्नल है ये, कि जो आने वाले दिनों में जो चर्चा होगी कि भगवान के साथ जो प्रेम की बात कर रहे हैं और फिर कृष्ण की भक्ति में जो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और फिर माधुर्य रस, और फिर माधुर्य रस में भी भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का चर्चा करते हैं राय रामानंद जी, और जो भागवत में लिखा है जिस प्रकार की सारी गोपियों को छोड़कर कृष्ण चले गए, तो बताते हैं रीजन कि क्यों चले गए, क्या रीजन था कि वहां पर श्रीमती राधा रानी भी थी और अन्य गोपियां भी थी, तो उसमें कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी जो है नाराज हो जाती है कि अरे ये तो साम्यवाद फैला दिया भगवान कृष्ण ने सोशलिज्म हो गया कि सारी गोपियां और मैं एक जैसी, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो राधा रानी जो है रास को छोड़ देती है और फिर कृष्ण जो है उनके विरह में परेशान हो जाते हैं और फिर ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो इस प्रकार जो है आगे ये सब चर्चा होगी। तो हम लोगों को आज के श्लोक से ये मालूम पड़ा कि ज्ञान मार्ग क्या है, कर्मकांड क्या है और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इनको रिजेक्ट किया। बेशक ये ज्ञान मार्ग में टॉप मोस्ट लेवल है डिवोशनल साइट में, लेकिन फिर भी भक्तों को जो है इस ज्ञान को विज्ञान में बदलना होता है और इसको करते करते ही फिर वो उन स्टेजेस पे पहुंचते हैं जो आगे भगवान ने बताए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी के प्रश्न या जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब है कि जो डिवोशनल सर्विस अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रम जो भक्ति की नवदा भक्ति है, इसका हमें ज्ञान भी है, अर्थात ये सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो शास्त्रों में ज्ञान दिया है जिस प्रकार इन सब वैदिक ज्ञान हो गया या जो अन्य ग्रंथों में ज्ञान है, इस ज्ञान का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है डिवोशनल सर्विस करना, और ये जो ज्ञान हमारे को प्राप्त है भगवान कृष्ण हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनकी क्या लीलाएं हैं, उनका धाम के विषय में जो नॉलेज है, ये सब है, तो हम लोग केवल ज्ञान रखकर इसका केवल शुष्क प्रचार नहीं करते, इसको सत्य मानकर इसको अपने जीवन में उतारते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञान मिश्रित का मतलब यह हुआ कि जी एक शब्द में कैसे बताएंगे इसको, ज्ञान मिश्रित को
अति आवश्यक है, तो इसको ज्ञान मिश्रण, ज्ञान मिश्रण ये होगा जो ज्ञानी है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहता है, तो हम भक्ति कर रहे हैं अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए, और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ नॉन वैदिक स्पेकुलेटिव नॉलेज, स्पेकुलेशन कर रहे हैं भक्ति में, वो ज्ञान मिश्रण है। कर्म का मिश्रण है कि हम अपने लाभ के लिए जो भक्ति की क्रियाओं को अपने लाभ के लिए कर रहे हैं उसमें कर्म मिश्रित हो गया, और जो ज्ञान मिश्रण है एक तरीके से वो भी अपने लाभ के लिए है, जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने का, क्योंकि जो ज्ञानियों का लक्ष्य है ब्रह्म में लीन होना, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना, एक ये है, और दूसरा स्पेकुलेशंस, इन डिवोशनल सर्विस वी हैविंग स्पेकुलेशंस, तो एक ज्ञान मिश्रण है।
इसमें वही जैसे हम कंकॉक्टेड फॉर्म्स अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं शास्त्रों के आधार पर, या फिर मुक्ति की इच्छा रखते हैं, तो ये ज्ञान मिश्रित। लेकिन हमारे को तो जब हम लोग अन्य अभिलाषा क्षेत्र शून्य करते हैं, अर्थात सारी अभिलाषा छोड़ के कृष्ण के लिए ही सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो मुक्ति और ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व भी होती हैं, उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना।
ज्ञान मार्ग स्पेकुलेटिव हो गया, उसमें जैसे यहां बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज की केवल ब्रह्म में लीन होना है उनका लक्ष्य, वो प्रोपा बता रहे हैं कि कंडीशन और लिबरेटरी स्टेट के बीच की स्टेज है, पूरी तरह से बुखार ठीक नहीं हुआ अच्छा बीच में अटका हुआ, नाइदर इन द मटेरियल वर्ल्ड नॉर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड,
जैसे वैकुंठ से नीचे के लोग बताए ब्रह्म,
बताया ना ब्रह्म में लीन होते फिर वापस नीचे गिरते, शुद्ध भक्ति नहीं है, विल टेक टाइम विद एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज यू कैन कम टू अन्य अभिलाषिता शून्य।
जैसे शुरू में हम लोग जब प्रचार करते हैं तो लोगों को हम लोग जन्म मृत्यु से बाहर निकलने की बात ही करते हैं, और लोग आकर्षित भी होते हैं उससे, और प्रचार भी इसी बात का करते हैं कि हाँ हमको मुक्त होना है, तो शुरुआत में तो ये रहता है कि हाँ भगवान हमें जो अभी तक ज्ञान नहीं था जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने का, तो उससे बाहर निकालिए, शुरू में इच्छा भी ऐसी थी, तो ज्ञान मिश्रित की ज्ञान भी है, लेकिन बाद में यही चीज जब प्रैक्टिकल विज्ञान के रूप में बदलती है, प्रैक्टिकल डिवोटीज के बीच में रहकर वो डिवोशनल सर्विस सीखता है, तो फिर वो चीज उस इच्छा को भी त्यागता है और फिर वो भगवान की प्रेमा भक्ति का अहेतु की अप्रतिहता। जैसे माइक
हरे कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भगवद गीता का वर्ष है यद करोषि यद अश्नासि, कृष्ण कहते हैं आप जो भी कुछ करो मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करो, जो मैंने मुझे समझ आया है कि ये कर्म कांड की पराकाष्ठा है, तो कोई अगर चीज कृष्ण से जुड़ती है तो वो कर्म योग होता है, तो ये कर्म कांड किस प्रकार बन जाता है?
कर्म कांड मतलब कर्म योगी बोलो, कर्म कांड की अगर पराकाष्ठा बोलो तो कर्म योग हो गया। कर्म जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फलों की इच्छाएं रहती है और हम देवी देवताओं की शरण में होते हैं, बट अगर इसी का हम लोग सबसे प्यूरिफाइड वो देखें तो देवताओं से हम कृष्ण की तरफ चले गए और कर्मों से डिवोशन सर्विस की तरफ चले गए, अर्थात जो भी कर रहे हैं अब तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनको ऑफर कर रहे हैं, तो तब जाके कर्म योग बनता है। ठीक है, ग्रंथ राशि में चैतन्य चरितामृत की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताई गौर विमला।